हम सभी आत्माएं परम आत्मा के गाइडेंस पर चल रहे हैं। हम सब आत्माओं को ये निश्चय है कि भगवान की श्रीमत हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। जो आत्मा भगवान के श्रीमत पर पूरा चलती है, उस आत्मा के लिए शिव बाबा की गारंटी है कि वो आत्मा ऊंच पद अर्थात अष्ट रतन में अवश्य आएगी। ऐसी आत्मा का जिम्मेदार भगवान स्वयं है। श्रीमत पर चलने वालों की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान श्रीमत पर चलने वाले बच्चे को आप समान बना देता है। भगवान आया ही है हम बच्चों को श्रीमत देकर ऊंचते ऊंच आत्मक रूप में शिव बाप समान और साकार सृष्टि में लक्ष्मी नारायण के समान श्रेष्ठ बनाने के लिए। और बनने का समय वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय बाप हम आप सबको श्रीमत दे रहा है। बाप श्रीमत तीन संबंधों के आधार से देता है। कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था, जो बाप टीचर सतगुरु तीनों को समान रीति से याद करता है, तीनों को समान रीति से श्रीमत पर चलता है, वही अष्ट रतन में आता है, पास विद आनर बनता है। तो बाप की श्रीमत में तीनों की श्रीमत एक साथ होती है, बाप टीचर सतगुरु। बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। क्या श्रीमत है? बच्चे संसोस फादर। बाप का नाम बाला करो। टीचर के रूप से श्रीमत है रेगुलर एंड पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ो और होमवर्क अवश्य करो। सतगुरु के रूप से श्रीमत है अशरीरी बनकर मुझ सतगुरु बाप को निराकारी दुनिया में याद करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति रखो। अब अगर तीनों की श्रीमत फॉलो करें तो प्राप्तियां क्या है। बाप में तीनों हैं, अगर बाप की श्रीमत फॉलो करेंगे तो पहली प्राप्ति बाप के आज्ञाकारी बनने से, बाप के आशीर्वाद के अधिकारी बन जाएंगे। अर्थात बाप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अभी जो मुरली चली थी 15 तारीख की, उसमें बाबा ने कहा कि बाप का नाम वाला करो, संसोस फादर। यह फादर बच्चों को श्रीमत दिया और संसोस फादर करने के लिए, अर्थात बाप का नाम हम बच्चों के द्वारा बाला हो, उसका आधार बताया था चलन और चेहरे के द्वारा बाप का गुण आप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। जब बाप का गुण आप आत्मा में होगा, वही चलन और चेहरे पर होगा, तो सब मानेंगे ये भगवान के बच्चे हैं। जैसे लौकिक दुनिया में देखो, किसी के अंदर अच्छे गुण होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, यह तो जैसे देवता है कहने में आता है। तो अच्छे गुण लौकिक दुनिया में आते हैं तो देवता कहलाते हैं, लेकिन जब परमात्म गुण आप में दिखाई पड़ेंगे तो परमात्म बच्चे कहलाएंगे। परमात्म गुण और देवताई गुण में क्या अंतर है? परमात्म गुण और देवताई गुण में क्या अंतर है? बोलो पांडव, क्या अंतर है परमात्म गुण और देवताई गुण? क्या अंतर है? शक्तियां है अंतर या दोनों एक ही है? क्या अंतर है परमात्म गुण और देवताई गुण में? अच्छा, यहां तक आवाज नहीं आई। परमात्म गुण है अनलिमिटेड, बेहद, और देवताई गुण है स्वरूप, लिमिट। इस समय हम बच्चे परमात्म गुण को धारण करते हैं तो क्या कहते हैं? आप मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर प्यार के सागर हो, और देवताओं को कहा जाएगा ये शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, वो स्वरूप ये सागर, वो लिमिट ये अनलिमिटेड। हर बात में लिमिट और अनलिमिटेड है। सतयुग में देखो, घराना होगा सभी ऊंचा नीचा पद है, परिवार की तरह रहेंगे, फिर भी अंतर बहुत रहेगा। राज घराने में प्रजा नहीं आ सकती, राजा के सिंहासन पर प्रजा नहीं बैठ सकती, और यहां एक बाप के बच्चे हम सब समान हैं। इसी सीट पर दादी भी आके क्लास कराती है, बड़े भाई भी कराते, बहनें भी कराती, जो भी आए यहां बैठ, यहां सब बेहद। ये कोई नहीं कह सकता ये छोटा ये बड़ा। पुरुषार्थ में जैसे स्कूल में जो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है क्लास का मॉनिटर स्वतः बन जाता है, वो रही अलग बात, लेकिन टीचर एक ही है, सब स्टूडेंट समान हैं, पढ़ाई से नंबर वार हो जाता है। तो देवताई गुण और परमात्म या ईश्वरीय गुण में अंतर हद और बेहद का है। तो बाप से आशीर्वाद मिलने का आधार है बाप के आज्ञाकारी बनना, और आज्ञाकारी बनने का आधार है संसोस फादर। अंदर सदा यह संकल्प रहे कि मेरे बोल से, मेरे दृष्टि से, मेरे चलन से भगवान का नाम वाला हो, भगवान का नाम वाला हो। तो जितना अंदर ये संकल्प रहेगा उसी आधार से आपका बोल और कर्म होगा, और जैसा संकल्प होगा उसका प्रभाव आपके चेहरे पर होगा। क्योंकि मनुष्य जो सोचता है उसका सबसे पहला प्रभाव मस्तक पर पड़ता है, फिर नयन पर आता है, फिर चेहरे पर आता है, फिर पूरे शरीर अर्थात एक्शन में आ जाता है। तो अगर अंदर यह संकल्प सदा रहे कि मेरे हर संकल्प बोल कर्म से बाप का नाम वाला हो, तो ऑटोमेटिक आपका चेहरा चलन उसी अनुसार हो जाएगा। टीचर के रूप से श्रीमत है, पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल और होम वर्क अवश्य करना, इससे टीचर से दुआ मिलेगी। टीचर की दुआ आपको पढ़ाई की धारणा में बहुत मदद दे देगी। अगर हमें आज धारणा में मेहनत पड़ रही है ज्ञान की धारणा में, तो इसका दो कारण है, एक पास्ट कर्म का खाता, दूसरा वर्तमान समय हम टीचर से दुआ नहीं ले पा रहे। नहीं तो टीचर की दुआ क्या नहीं कर सकती है। परमात्म दुआ है, साधारण दुआएं नहीं है, लेकिन हम टीचर से दुआ ले नहीं पाते, क्योंकि टीचर से दुआ लेने की विधि है ही, एक तो पढ़ाई रेगुलर रोज पढ़ो, और दूसरा पंक्चुअल। पंक्चुअल का अर्थ है कि क्लास में टाइम पर आना और टाइम से जाना। अपना क्लास जो योग शुरू होता है तब से अपना क्लास शुरू है। योग क्यों कंपलसरी है, क्लास में योग क्यों एड है, क्योंकि आप घर से आते हो, लौकिक घर से, घर में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। अब अगर आप क्लास में आकर 10-15 मिनट पहले पहुंचकर योग कर लिया तो वो बातें थोड़े समय के लिए दब जाएंगी, आपका बुद्धि योग एकाग्र हो जाएगा, पढ़ाई बुद्धि में बैठ जाएगी। इसीलिए पहले योग कराया जाता है। लेकिन हम योग करने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठती है। कारण अनुभव होगा, आप भल मुरली सुन रहे होंगे तो या तो नींद आएगी और या तो फिर व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे, एकाग्रता नहीं बन पाएगी। इसलिए मुरली पंक्चुअल, और वैसे भी देखो आप सब स्टूडेंट तो रहे ही हैं, अगर आप लौकिक स्कूल में टीचर आ जाए उसके बाद कोई क्लास में आए तो अलाउ करते हैं उस पीरियड में? नहीं ना। लेकिन यहां नहीं मना किया जाता है। क्यों नहीं मना किया जाता है? चाहे मुरली पूरी हो गई हो, उठ रहे हो, तो भी आ जाए तो मना नहीं किया जाता है। क्यों नहीं मना किया जाता है? क्योंकि यहां अपने बाप का ही स्कूल है और अपना बाप ही टीचर है। तो जब बाप का स्कूल और बाप का टीचर, बाप ही टीचर, तो मना कौन करे? लेकिन अगर टीचर के आने के बाद कोई आता है तो यह टीचर का अपमान है, इंसल्ट है। टीचर के आने के बाद क्लास में आना, यह टीचर का इंसल्ट है। क्या इंसल्ट की सजा है? लौकिक स्कूल में सजा है, क्लास में नहीं आने देते हैं। इस स्कूल में सजा है कि पूरी मुरली सुन लेंगे, या जब आए तब से मुरली सुन लेंगे, लेकिन एक पॉइंट भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, एकदम जैसे आए थे वैसे रहेंगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये सजा है। तो टीचर से दुआ लेने के लिए रेगुलर एंड पंक्चुअल। होता क्या है, बहाना बनाते हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि 10 माइल से 6 माइल से दूर आना हो तो भी आकर मुरली सुनो, बहाना नहीं करना चाहिए। लेकिन बहाना क्या करते हैं, टीचर को बड़ा रायल बहाना सुनाते हैं। क्या कि घर में मेहमान आ गए थे, इसलिए क्या करें, नहीं आ सकते, मेहमान को कैसे छोड़ें, या कुछ न कुछ कारण बता देंगे। आप सोचो कि यह कारण यथार्थ है, अगर मेहमान हैं और आप मेहमान को छोड़कर नहीं जा सकते हो क्लास में, तो एक प्रश्न है, बाबा ने कहा था कि मान लो जिस समय आपके क्लास का टाइम है, आपको क्लास में आना है और आपके घर में मेहमान आया हुआ है और आपको कोई कहे कि आप आधा किलोमीटर दूर उसी समय आप आ जाना, आपको 10,000 रुपया ऐसे ही मिल जाएगी और उस समय आपको रुपए की आवश्यकता है, तो मेहमान छूटेगा या नहीं छूटेगा? छूटेगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको बाबा की मुरली 10,000 के बराबर भी नहीं फील हो रही है। तभी तो मुरली छोड़ दोगे लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पैसा से प्रैक्टिकल प्राप्ति हो रही है और मुरली से प्राप्ति बहुत ज्यादा है। भगवान कहता है एक एक बरसंस लाखों रुपए का है, लेकिन इसलिए मुरली छूट जाती है क्योंकि एक एक बरसंस लाखों रुपए का है, ये आत्मा अनुभव नहीं कर पाती, प्राप्ति नहीं कर पा रही है। और प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि एक तो पास्ट का खाता, दूसरा टीचर से दुआ नहीं ले पा रही। टीचर की दुआएं लो, खाता तो सबके ऊपर है, वो खाता खत्म करेगा। तो यह अगर हम अंदर लक्ष्य ले लें कि मुझे आत्मा को टीचर से दुआ लेना ही है, तो पंक्चुअल और रेगुलर बन जाओगे। दूसरी बात, होमवर्क। टीचर उस बच्चे के ऊपर खुश होता है जो बच्चा होमवर्क करता है। अगर टीचर होमवर्क दे और कोई बच्चा होमवर्क न करे, तो उसके ऊपर टीचर कभी खुश होगा? कभी भी नहीं। जैसे अभी बाबा ने होमवर्क दिया, बच्चे मनसा सेवा करो या अपने चलन चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये होमवर्क दिया है। व्यर्थ संकल्प से स्वयं को मुक्त करो, होमवर्क दिया है। अभी जो आत्मा इस होमवर्क को करने के पुरुषार्थ में लग गई है, कोई 100% विजयी नहीं लेकिन लग गई है, उसको टीचर की ब्लेसिंग मिल जाएगी और वो 100% सफल हो जाएगा। अगर कोई करना ही नहीं शुरू किया है, सोचा बाद में करेंगे, उसको टीचर की दुआ नहीं मिलेगी। क्योंकि टीचर जो होमवर्क देता है उसी समय करने से टीचर बहुत खुश होता है। एक बार गुलजार दादी बताती थी, मम्मा से पूछा, मम्मा जिसने आपको कोर्स दिया या हम सब जितनी बहनें हैं उन सबसे आप आगे कैसे चली गई, क्या पुरुषार्थ किया? तो मम्मा ने कहा क्या पुरुषार्थ किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक ही चीज जानती हूं, वो ये है कि जो बाबा के मुंह से निकला वो मुझे करना ही है। बस इतना जानती कि जो बाबा के मुंह से निकला वो मुझे करना ही है, इसलिए मम्मा मम्मा बन गई, नंबर वन बन गई। भाइयों में देखो प्रैक्टिकल में कि जिस समय भगवान ने कहा तुरंत करने से उसका कितना बड़ा रिटर्न भगवान देता है। एक बार माउंट आबू में रात्रि क्लास में बाबा ने कुछ होमवर्क दिया कि आप बच्चे इस पर लिख करके लाना, सुबह बाबा उस होमवर्क को देखेगा। तो जैसे रात्रि क्लास पूरा हुआ सब सोने के लिए गए तो लाइट चली गई, तो जब लाइट चली गई तो लोग लिखेंगे कैसे, तो सबने यही सोचा जब लाइट चली गई है तो कैसे लिखेंगे, सुबह बाबा को बता देंगे, बाबा तो खुद ही जानता है लाइट नहीं है। तो सब सो गए, लेकिन जगदीश भाई जिसने सारी किताबें लिखी है, जगदीश भाई कमरे से उठ करके बाहर गए, जो रोड लाइट थी उस रोड लाइट के नीचे बैठ करके जो बाबा ने होमवर्क दिया था उसको लिखा। और जब सुबह बाबा ने क्लास में पूछा कि किस बच्चे ने होमवर्क किया है, तो सबका एक ही जवाब था कि बाबा लाइट नहीं थी तो कैसे लिखे। लेकिन जगदीश भाई ने कहा बाबा मैंने लिखा है। उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को संजय का, गणेश का, विद्यापति का, जितनी टाइटल थी भगवान ने उसे वरदान के रूप में वही दे दिया। तो भगवान से वरदान प्राप्त कैसे हुआ, होमवर्क करने से। जिस दिन जो मुरली सुनते हैं उस मुरली से एक पॉइंट ले लो, अच्छा कुछ और छोड़ो। बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली में वीआईपीओं को भी बोला, जो वरदान सुनते हो रोज मुरली में वो वरदान ले लो, कि आज बाबा ने मुझे वरदान के रूप से ये कहा है और उसी का अभ्यास करो। कोई भी करो, सिर्फ वरदान ही नहीं, कोई भी चीज अगर अभ्यास करो तो आपको तीन फायदा उसी समय देखेंगे। करके देखो कि जब मुरली चली और उस समय संकल्प लो कि मुझे करना है। एक तो जैसे संकल्प लोगे कि मुझे करना है, आपके अंदर से उमंग उत्साह जागृत होगा, ये भगवान की मदद शुरू हो जाती। उमंग उत्साह जागृत होना, करना है तो उमंग उत्साह जागृत होगा, और उमंग उत्साह जागृत होते ही आप आत्मा में जो शक्तियां मर्ज हैं वो इमर्ज हो जाएंगी। आप आत्माएं साधारण आत्माएं नहीं हो, कल्प पहले भी आप आत्माएं ही देव आत्मा बनी थी, निश्चित है, देव आत्मा बनी थी, आप आत्मा में देवताई संस्कार भरे हैं, गुण भरे हैं, शक्तियां भरी हैं, सिर्फ मर्ज हैं देह भान के कारण। तो जैसे उमंग उत्साह आता है तो वो शक्तियां इमर्ज होने लगती है, और शक्तियां इमर्ज होने से जैसे कर्म क्षेत्र पर बढ़ाते हो कदम, विघ्न भी आते हैं, परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन जैसे कदम बढ़ाते हो तो भगवान के महावाक्य हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, भगवान की मदद उस विघ्न को सूली से काटा करता जाता है और आपका पुरुषार्थ बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, जैसे प्रैक्टिकल करने शुरू का लक्ष्य लेते हो, मुरली सुनते सुनते संकल्प लिया करना है, तो जो संकल्प तुरंत लेते हो करना है उसमें काफी बल भरा हुआ होता है। जैसे देखो, कोई ताजा फल खाओ या खाना खाओ, और वही खाना बासी खाओ बाद में खाओ, तो दोनों के ताकत में अंतर है या नहीं है ना? तो जो संकल्प मुरली सुनते सुनते किया और करने के लिए सोचा वो बल, और जो थोड़े समय के बाद सोचा, बहुत अंतर पड़ जाता है। बीच के पीरियड में कई प्रकार के विघ्न परिस्थितियां कई कारण बन जाते हैं जो नहीं कर पाते। इसलिए होमवर्क पर बहुत अटेंशन दो। होमवर्क से सबसे बड़ा फायदा है, आप थोड़ा सा सोचो, अगर आप सारे दिन के अंदर एक पॉइंट होमवर्क के लिए लो लो रोज, तो अगर एक पॉइंट होमवर्क के लिए लिया और उस पर आप 8 घंटा 10 घंटा अटेंशन दिया उस पॉइंट पर प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वो पॉइंट आपके संस्कार में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना, उस पॉइंट का स्वरूप बन जाओगे ना। तो अगर एक दिन में आप एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी, आपको संपूर्ण बनने में देरी लगेगी नहीं ना? लेकिन हम यही नहीं कर रहे, मन को होमवर्क नहीं दे रहे, मन को खाली छोड़ा हुआ है, जो चाहे सोचे। अगर आपने मन को काम नहीं दिया है, खाली छोड़ा है, तो क्या कहा गया है? खाली मन वो सब अनुभवी है। इसी को भगवान व्यर्थ संकल्प कहता है, क्योंकि मन खाली होगा तो पास्ट संस्कार वाली बात सोचेगा, पास्ट जीवन वाली बात सोचेगा, पास्ट बातें सोचेगा, तो पास्ट को तो भूतकाल कहा जाता है, तो पास्ट की बातें सोचना अर्थात भूत बनना। भूत, अगर भूत बन गए तो भूत खुद भी परेशान होता है, दूसरे को भी परेशान करता है, भूत भटकता बहुत है। तो जिसका पास्ट की बात सोचता है उसकी बुद्धि भटकती बहुत, खुद भटकती है और दूसरों को परेशान करती। इसलिए होमवर्क पर बहुत अटेंशन दो, मन को खाली नहीं छोड़ो। हमारी सबकी बहुत बड़ी कमी है मन को खाली छोड़ना, क्योंकि 63 जन्म से आदत पड़ी है मन को खाली छोड़ने की। अब जब मन को काम देने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर तो अटेंशन देते हैं, लेकिन जो संस्कार पड़ा हुआ है वो तुरंत रिटर्न वापस ले जाता है, क्योंकि मन को काम देकर ऑर्डर में चलाना बड़ी मेहनत है और खाली छोड़ देना आराम है। इसलिए मेहनत नहीं होती है फिर छोड़ देते हैं मन को खाली, लेकिन यही तो मेहनत करनी, पुरुषार्थ ही यही करना, बाकी करना क्या है। मन को श्रीमत प्रमाण चलाना, बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाना, पुरुषार्थ ही यही, और करना क्या है, लेकिन छोड़ देते। तो टीचर से दुआ लेने की विधि है होमवर्क करना। अभी जो अव्यक्त मुरली में विशेष 3 बातों का होमवर्क मिला हुआ है, मनसा सेवा, व्यर्थ संकल्प मुक्त, चलन चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, इन तीनों पर फुल अटेंशन दो। अपने मन में स्वयं सोचो कैसे मनसा सेवा करें, किस तरह से करें। अगर आपके अंदर संकल्प है कि कैसे करें, किस तरह से करें, तो बाबा भी टच करेगा और फिर आप और दूसरों से भी पूछोगे कैसे करें। और जब आपके अंदर संकल्प है करें, तो जो दूसरा बताएगा उसको करने लग पड़ोगे। अगर अपने अंदर संकल्प नहीं उठता है, भगवान ने डायरेक्ट कहा है, लेकिन अगर अपने अंदर हम संकल्प नहीं क्रिएट कर रहे हैं, नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, तो वैसे मन को खाली छोड़ा हुआ है अब भी, जबकि भगवान ने डायरेक्ट कहा है, कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं कहा है, भगवानों वाच है। लेकिन अगर मन को हम क्रिएटिव नहीं बनाया है तो अब भी मन को खाली छोड़ा हुआ है। इसलिए मन बुद्धि को काम दो, ये तीनों बातें सोच लो, अपने मस्तक पर अंडरलाइन कर लो, बहुत मजा आएगा, बहुत बाबा की मदद मिलेगी। खुशी से देखना, धरती पर पैर नहीं टिकेगा, इतनी आंतरिक खुशी आएगी। यही जीवन तो मजा का जीवन है। अगर भगवान का बनकर थोड़ा भगवान का माना, थोड़ा अपनी मन का माना, थोड़ा दूसरे का कहना माना, तो ना इस जहान के रहे ना उस जहान के रहे। भगवान के बने हो, भगवान को जान लिया है, पहचान लिया है, तो अब भगवान के पूरे श्रीमत पर चलो। पूरा कल्प तो देहधारियों में ही रहे, यही थोड़ा सा समय भगवान हम आप सबके साथ है। वो भी बाबा ने देखो उस दिन मुरली में कह दिया, ये भी आना जाना कब तक, कब बाबा का ये पार्ट पूरा हो कुछ पता नहीं। भगवान पूरे कल्प में अभी थोड़े समय के लिए मिलता है, बाकी देह धारी तो पूरे कल्प मिलते ही रहेंगे, देह भी पूरा कल्प मिलती रहेगी, लेकिन भगवान अभी ही मिला है। तो जो इतने थोड़े समय के लिए मिला हुआ है उसके श्रीमत पर चलकर प्रतिपल उससे मिलन मनाओ, उससे प्राप्तियां करो, भगवान की प्राप्ति का सुख लो। देह मिलती रहेगी, देहधारी मिलते रहेंगे, ऐसे कभी नहीं कि कब ना मिले, सदा ही मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अभी है। ये अंदर सोचो कि भगवान जो इतना मीठा प्यारा है, इतना हमको महान बना रहा है, अभी ही मिला हुआ है, उसके एक एक श्वास पर स्वयं को कुर्बान करने की भावना उत्पन्न करो। उसके श्रीमत पर चलने में कल्याण ही कल्याण है। हम सिर्फ अपनी मत ऐड कर देते हैं कि बाबा ने कहा है ऐसे कैसे होगा, अपनी मत, लेकिन बाबा ने कहा है तो जिम्मेदार है। कई ऐसे कहते हैं कि हमने जब से बाबा के श्रीमत पर पूरा चलना शुरू किया तो होता हमारे पास्ट कर्म का खाता है, कुछ विघन भी आते, परिस्थिति भी आती, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, हो जाता होगा, तो गलती भगवान की दे देते। लेकिन देखा जाए तो बाबा कल्याणकारी है। अगर हमारे सामने विघन आता है तो बाबा कल्याणकारी और त्रिकालदर्शी है, हमारे आपके तीनों कालों को जानता है, तो तीनों कालों को जानने के कारण जिस प्रकार से आप आत्मा का कल्याण होना है वही बाबा करेगा। मान लो हमारे सामने विघन आया तो विघन भगवान ने नहीं भेजा, लेकिन विघन आया है किस लिए, क्योंकि बाबा एक साथ तीन काम करता है बच्चों का। एक, खाता खत्म कराता है, क्योंकि खाता खत्म नहीं होगा तो ऊंच पद मिलने वाला नहीं है, तो खाता खत्म कराता है, लेकिन बाप फिर संभाल भी लेता है, गिरने भी नहीं देता है। विघन जोर से आएंगे, जब देखेंगे बस ये बच्चा गिरा कि गिरा, कुछ ऐसी मदद बाबा चाहे स्वयं चाहे किसी के द्वारा दिला देता है, फिर खड़े हो जाते। तो भगवान को बच्चों का खाता खत्म करना ही है, इसलिए क्यों खत्म करना है, क्योंकि ऊंचा पद देना है। तो बाप हमारे खाते को खत्म करा रहा है, संभाल रहा है, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, त्रिकालदर्शी न बनकर एक कालदर्शी बनते, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बाबा के बने फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कारण क्यों बने। तो यह एक कालदर्शी है, तीन कालदर्शी बनो तो कभी भी आपको जरा सा भी संकल्प नहीं आएगा, आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहेगा। त्रिकालदर्शी होकर सोच, एक कालदर्शिनी, अगर विघ्न आया है तो विघ्न हमारे खाते को खत्म कराने के लिए आया, ऐसे नहीं आया। एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं कि एक बहन थी जो साकार बाबा के समय ज्ञान में चली थी, तो उस समय बेगरी पाठ था, बहुत यज्ञ में गरीबी थी, तो उस समय अगर कोई मदद किया तो वो मदद बहुत महान मदद, बेगरी पाठ के समय, तो उस बहन ने बहुत मदद किया था। जो भी उसके पास तन मन धन था, टीचर थी, सब बाबा को मदद बेगरी पाठ के समय दिया। तो एक बार वो सुबह उठी 4 बजे योग करने के लिए, अकेली रहती थी घर में, कन्या थी, तो सुबह उसने सोचा चाय बनाकर पी लेते फिर चलते हैं योग करते। तो छोटा सा कमरा था, किचन था, उसमें गैस सिलेंडर था, तो उसने रेगुलेटर नहीं बंद किया था, ऊपर से ही गैस बंद कर दिया था, तो रात को चूहे ने गैस की पाइपलाइन काट दी, तो पूरा गैस कमरे में फैला हुआ था, कोई वेंटिलेशन कुछ नहीं था, वहीं फैला हुआ था। तो जैसे वो बहन गई चाय बनाने के लिए, तो जैसे लाइट जला के माचिस जलाई, गैस तो फैली थी, उसी में जल के मर गई। अब जब भोग लगा, आप सोचो कि जिस बच्ची ने इतना बाबा की मदद की है, उसको बाबा ने क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया बाबा ने, इतनी मदद की, हिसाब किताब तो था, लेकिन भगवान फिर किस लिए है? भगवान के समय ऐसे समय पर मदद की है जबकि बेगरी पाठ था। तो बाबा से संदेश में यही पूछा गया था कि बाबा आपने उसे क्यों नहीं मदद की, क्यों नहीं उसकी बुद्धि को टच किया कि माचिस नहीं जलाओ। सारा काम तो बुद्धि का ही था ना, कि उस समय नहीं जलाती। तो बाबा ने संदेश में कहा कि इस बच्ची ने बाप को ऐसे समय पर मदद दिया है, बाप इसको ऊंचा पद देने के लिए बांधायमान है, बाप को इसको ऊंचा पद देना ही है, लेकिन इस बच्ची के ऊपर इतना पाप का बोझा था, ये कितना भी योग लगाती खत्म नहीं कर पाती। अब इसका सारा खाता खत्म हो गया, अब ये ऊंच पद की अधिकारी बन गई। तो प्रैक्टिकल देखो, एक कालदर्शी बनकर देखो तो कितना खराब है, और त्रिकालदर्शी बनकर देखो तो कितना कल्याणकारी। तो अगर त्रिकालदर्शी बनकर आप सोचोगे तो हर बात में आपको कल्याण अपना आ जाएगा, और बाप कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, आपका हर बात में कल्याण ही कल्याण। लेकिन श्रीमत पर चलो तब, अगर श्रीमत को तोड़ा तो कल्याण नहीं। श्रीमत पर चलो, कुछ भी विघ्न आया तो कल्याण, बाबा बैठा है, सब संभाल लेगा। और तीसरा सतगुरु की मत है, अशरीरी होकर सतगुरु बाप को याद करो, वरदान के अधिकारी बन जाओगे। वरदान एक है अपने पुरुषार्थ को करना, एक है सतगुरु के द्वारा वरदान प्राप्त करना। तो वरदान प्राप्त करने में मेहनत है, और जब वरदान मिल जाता है फिर वरदान काम करता है। उदाहरण के रूप से गुलजार दादी जब छोटी थी, शुरू में यज्ञ में आई थी, पुरुषार्थ खूब कर रही थी, सभी पुरुषार्थ कर रहे थे, तो उनके पुरुषार्थ को देखकर गुलजार दादी के बाबा ने गुलजार दादी को वरदान दिया था। उस समय का पुरुषार्थ क्या वरदान दिया था कि इस बच्ची के बोल बहुत मीठे हैं। अब भी देखो गुलजार दादी बहुत कम बोलती, बोल बहुत मीठे हैं, आगे चलकर इसका बोल बहुत सेवा करेगा। इस बच्चे के नैन रूहानी हैं, आगे चलकर इस बच्ची के नैन बहुत सेवा करेंगे। तो शुरू में गुलजार दादी ने पुरुषार्थ किया वरदान लेने के लिए, और जब वरदान मिल गया अब गुलजार दादी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अब भगवान खुद दिए हुए वरदान को सफल कर रहा है, मुख के द्वारा वाणी सुना रहा है, मीठे बोल सुना रहा है, नयनों के द्वारा दृष्टि दे रहा है। तो देखो वरदान लेने की मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब वरदान मिल गया फिर वरदाता अपने आप ही वरदान को सफल करेगा, फिर हमें कुछ नहीं करना। तो सतगुरु से वरदान लेने की विधि है कि सतगुरु के फरमान पर चलो। फरमान, फरमान में अपनी मत नहीं, जैसा सतगुरु ने कहा है वैसे ही करना है, ना अपनी मत ना पर मत ना कोई मत, फिर सतगुरु से वरदान मिल जाता है। और वरदान ली हुई आत्मा महानता को प्राप्त कर ही लेती है, मेहनत खत्म हो जाती है। तो बाप तीन रूप से श्रीमत दिया, बाप के रूप में तीनों रूप समाये, बाप टीचर सतगुरु। लेकिन बाप बच्चों को कितने प्रकार से श्रीमत देता है, ये तो बाप के रूप में तीनों रूप है, लेकिन बाप कितने प्रकार से श्रीमत देता है, बाप चार प्रकार से श्रीमत देता है, चार प्रकार से। पहली है मुरली, चाहे साकार चाहे अव्यक्त मुरली। दूसरा है दिव्य संदेश, जो संदेश लेकर आते बाबा से, संदेश पूछते चाहे गुरुवार चाहे किसी दिन, दिव्य संदेश। तीसरा है जब आप योग में बैठते हैं, लाइन क्लियर होती है तो बाबा दिव्य टचिंग देता है, दिव्य टचिंग देता है, टच होता है। और चौथा है निमित्त आत्माओं के द्वारा मिला हुआ डायरेक्शन। तो चार प्रकार से श्रीमत देता है, और आपको क्लियर होगी। एक श्रीमत थोड़ा क्लियर कर देते हैं फिर तो योग चलेगा। एक श्रीमत क्लियर करते हैं, वो है कि हम योग में बैठे थे, और हमें बाबा की टचिंग हुई है, बाबा ने टच किया है, हम कैसे माने कि ये बाबा की टचिंग है? आप योग में बैठे थे, आपको ऐसा लगा कि बाबा ने टच किया है, चाहे आप अपने पुरुषार्थ के बारे में पूछा, चाहे कोई विघन परिस्थिति आई थी उसके बारे में पूछा, चाहे कोई सेवा के बारे में पूछा, कुछ भी आपने बाबा से पूछा और बाबा ने आपको बताया, तो कैसे पता पड़ेगा कि बाबा ने ही बताया है, बाबा की ही टचिंग है, ये कैसे पता पड़ेगा? क्या निशानी होगी? कैसे आपको पता पड़ेगा कि बाबा ने ही बताया? उसकी निशानी तीन है, तीन निशानी है। पहली बात, जो बाबा की टचिंग होगी, आपको अंदर से 100% ये महसूस होगा कि ये पॉइंट तो मेरी बुद्धि में थी ही नहीं, इसका तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था, यह बात तो मेरी शक्ति से बाहर थी। जो बाबा की टचिंग होगी, जो आपकी बुद्धि में भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था उसके बारे में, आपकी बुद्धि की शक्ति से बाहर था बाबा की टचिंग। दूसरी बात, जो बाबा की टचिंग होगी वो अंदर 100% विश्वास होगा कि ये बात राइट है या नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, बाबा की टचिंग है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, 100% अंदर से लगेगा नहीं सत्य, बाबा की टचिंग, बाबा की टच, ये अंदर से 100% कॉन्फिडेंस आएगा। अगर 100% अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं जागृत हो रहा है तो बाबा की टचिंग ने कुछ मिक्सरिटी जरूर, कुछ बाबा की कुछ अपनी, लेकिन अगर अंदर से 100% आता है तो टचिंग है। तीसरी बात, आप जिसको वो बात बताएंगे वो भी मान लेगा राइट, जिसको भी बताएंगे मान लेगा, और उस कर्म में आपको 100% सफलता मिलेगी, उस कर्म में 100% सफलता मिलेगी। ये निशानी है बाबा के टचिंग। तो चारों प्रकार के श्रीमत को फॉलो करने वाला, मुरली, दिव्य संदेश, दिव्य टचिंग और निमित्तात्माओं के द्वारा, क्योंकि मुरली में श्रीमत कुछ जनरल है, कुछ पर्सनल है, पर्सनल श्रीमत को जनरल नहीं लेना, क्योंकि बाबा पर्सनल श्रीमत भी मुरली से ही देता है और जनरल श्रीमत मुरली से देता है। जैसे पर्सनल श्रीमत है कि बाबा मिलिट्री वालों को या किसी को ऐसा कहता है, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति, कोई चारा नहीं है, तो बाबा की याद में दृष्टि दे करके उस भोजन को आप स्वीकार कर लो, ये पर्सनल श्रीमत है। जनरल श्रीमत है बाबा की याद का बना हुआ भोजन, पवित्र आत्माओं के हाथ का बना हुआ भोजन आपको स्वीकार करना, लेकिन पर्सनल श्रीमत को जनरल में नहीं ले आओ, कई पर्सनल श्रीमत को जनरल में ले लेते हैं, फिर कहते हैं बाबा ने तो इस मुरली में कहा था, वो फिर नुकसान दे देती। इसलिए पर्सनल श्रीमत पर्सनल पर रहने दो, जनरल श्रीमत जनरल पर, क्योंकि हर एक बच्चे के ऊपर जैसी स्थिति है, जैसा सरकम टांसेज है, उस अनुसार से श्रीमत। अब आप सोचेंगे पर्सनल जनरल श्रीमत का कैसे पता पड़े? सुंदर बात है, पर्सनल जनरल की बात वहां आती है जब सामने विघ्न आता है, परिस्थिति आती है, तब आता है करें या न करें। उदाहरण के रूप से मान लो आपके घर में ज्ञान में कोई नहीं चलता है, आपको भिखारी के हाथ का खाना पड़ रहा है, मान लो ऐसी परिस्थिति है, अब क्या करें? अगर खाते हैं तो श्रीमत का उल्लंघन है, नहीं खाते हैं तो कहां जाएं, क्या करें? ऐसे समय पर जो निमित्त आत्मा सेंटर की टीचर्स बहन है उससे आप राय ले लो। अगर वो कहती है आप खाओ तो आप खाओ, आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाबा जिम्मेदार, क्योंकि निमित्त के द्वारा मिला। अगर निमित्त कहती नहीं खाओ तो फिर नहीं खाओ, बोलती नहीं खाओ तो नहीं खाओ, फिर प्रश्न है खाएं कहां? टीचर अपने आप ही बताएगी, जब डायरेक्शन दिया है तो जिम्मेदार। लेकिन डायरेक्शन की 100% पालना करो, उसमें अपनी मर्जी नहीं चलाओ। उदाहरण के रूप से एक बार ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई, इस समय तीनों बड़े भाई हैं, दोनों साकार बाबा से मिल रहे थे, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हैं, तो दोनों जब बाबा से मिले तो यही कहा, बाबा मुझे बाहर का खाना पड़ता है, क्या करूं? तो बाबा ने ब्रजमोहन भाई को बोला कि हाँ ठीक है, ऑफिस में ऑफिसर्स होते, मीटिंग होती है तो तुम चाय पी लिया करो, ब्रजमोहन भाई को बोला, और रमेश भाई को बोला बिल्कुल नहीं पीना। देखो दोनों सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दोनों की नौकरी एक ही है, लेकिन दोनों को डायरेक्शन अलग। ब्रजमोहन भाई को बोला तुम्हें पीना है, रमेश भाई को बोला बिल्कुल नहीं पीना, और दोनों ने हां कर लिया, प्रैक्टिकल जीवन में ले आए, उसका फायदा मिला। तो कहने का भाव, जो डायरेक्शन मिलता वो करो, उसमें क्यों क्या का नहीं चलाओ। ब्रजमोहन भाई को बोला तुम अगर चाय नहीं पियोगे तो तुम्हारे साथ वाले जो ऑफिसर हैं वो तुमसे नाराज हो जाएंगे, तो जो तुम सेवा के लिए इतना घड़ी घड़ी भाग जाते हो, सब ऑफिसर साथ वाले खुश हैं, छुट्टी दे देते हैं, वो तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए तुम उनके हाथ की चाय पी लिया करो, ब्रजमोहन भाई को बोला। और रमेश भाई को बोला अगर तुम दूसरे के हाथ का चाय नहीं पियोगे, चूंकि सीए हैं तो बहुत लोग आते हैं काम कराने के लिए, तुम उनके हाथ का नहीं पियोगे तो कहेंगे देखो हमारे साहब कितने ईमानदार हैं, किसी के हाथ का चाय भी नहीं पीते हैं, अरे बच्चे बहुत ग्राहक बढ़ जाएंगे। तो देखो उनको ना पीने से कितना बड़ा फायदा और इनको पीने से कितना बड़ा फायदा। तो जैसा श्रीमत मिलती है उस पर स्वयं को प्रैक्टिकल जीवन में ले आओ, उसमें संकल्प नहीं चलाओ ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर आप स्वतः ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन चारों प्रकार के श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाला ही बाप समान स्थिति को सहज प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।
साथी है। कदम
कदम पर मदद तुम्हारी ये।